سے دوسرے کے اختیار میں مدیات میں بات کر رہے تھے, ولایت میں تو چھوٹے بڑے سب کو سکھاتے رہتے ہیں کہ بندوق ہاتھ میں دے دو اور تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, پرنتو تمہاری لڑائی بندر پور ہے, اسکول ہاتھ میں تو کوئی اسکول ہتھیار نہیں ہے لیکن بزرگ کی ہاتھ میں ہمیشہ ہتھیار رہتا ہے. کون سا ہتھیار رہتا ہے اور کس سے لڑائی لڑنے کے لیے؟ پانچ وکاروں سے لڑائی ہے, تو پانچ وکاروں سے لڑائی لڑنے کے لیے بزرگ میں بزرگ کی ہاتھ میں ہتھیار ہمیشہ بن رہے ہیں. تمہاری لڑائی بندر پور ہے, تم کہیں گے ہم تو راون پر جیت پہنے ہیں, جتنا جتنا راون پر جیت پہنتے جا رہے گے اتنا پتی سے پاون بنتے جا رہے گے. راما راجی میں کوئی پتی نہیں ہوتا اور راما راجی میں سب پتی ہی ہوتے. ابھی تم بچوں کو اسی آج کی یاترا پر رہنا, اسی آج کی یاترا سے ہی وکرما جیت بننا ہے. جنو جنمانتر کے پاپوں کا بوجھ سر پر ہے اس لیے انجامل کہا جاتا ہے, اس لیے انجامل کہا جاتا ہے کہ بہت جنموں کا بوجھ سر کے اوپر اکٹھا کیا جاتا ہے تو آجام سے جا کے مل جاتے ہیں. آجامانا بکری, بکری کیا کرتی ہے؟ ایک تو میں کرتی ہے اور دوسرا کوئی کے بھی پیچھے چل پڑتی ہے. بدھی ایسی بن جاتی ہے میرے بکریوں میں, جتنے جو تھا ستیہ بچن مہاراج ایسی بدھی بن جاتی ہے, اسے کہتے ہیں آدمی جیسی بدھی. آہستے آہستے دن پرتی دن آرام جیسے کیسے بنتے ہیں یہ تم جانتے ہو, دھیرے دھیرے بنتے ہیں. مایا ایک دم ہپ نہیں کرتی ہے, کڑائی کم ہوتی جاتی ہے. ہم نئی دنیا میں سب پونے بھی کاری تھے اور پرانی دنیا میں سمپورن وکاری, یہ ہے ہی پچھلے سورڈ سچو ہے مائسور سورڈ اور پچھلے سورڈ میں دیکھو کتنے ڈھیر منشی ہیں. رات پوری ہو پھر دن ہوتا ہے اور رات اور دن کے بیچ کا یہ ہے سنگم یوگ, اس کی مہما کوئی بھی جانتے نہیں ہے. گیتا کوئی دوابر میں لے گئے کہ دوابر کے انت میں کس نے گیتا سنائی, سنگم کا تو کسی کو پتا نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہے کہ نئی دنیا کو رچنے والا کون ہے. ابھی تم سمجھتے ہو ہم کو پوڑی سے ہیرے جیسا بننا, بنے نہیں ہے ابھی, بننا ہے. اس کو کس کو بننا ہے؟ ہمیں, ہمیں مانا ہم جو بھی آتمائے ہیں جو بھی باپ کے جان کو سمجھتے ہیں ان کو پوڑی سے ہیرا جیسا بننا ہے. آتما ہیرا بنتی ہے, آتما پوڑی بنتی ہے. یہ کیسے بنتی ہے؟ کوڑی کو یاد کرتی ہے, گھڑی گھڑی کوڑی یاد آتی ہے تو کوڑی مثل بن پڑی, انت متے سوگتے ہو جاتی ہے. اور گھڑی گھڑی ہیرا یاد آتا ہے تو انت متے سوگتے ہو جاتی ہے. کیا گتی ہو جاتی ہے؟ ہیرے کو یاد کرتے کرتے ہیرو پانچ تاریخ کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. हम भी हीरो पारिशाली हो जाते हैं। माया क्या बनाती है? माया हमारे जीवन को कौड़ी मिशन जमा बनाती है और बाप आकर हीरे मिशन बनाते हैं। ऐसा हीरे मिशन बाप दादा की सिवाय कोई बना नहीं सकता। इसको कहा जाता है रूहानी बाप का रूहानी ज्ञान, वो सब है जिस्मानी ज्ञान जो मनुष्यों को सिखाते रहते हैं। कहेंगे फलाना महात्मा आया, देह का नाम लिया जाता है और यहाँ तो सिखाने वाला देहधारी है ही नहीं। देहधारी माना देह में आसक्ति रखने वाला नहीं है जो हमको पढ़ाता है। हमको कौन सी सोच पढ़ाती है? ये हमेशा बुद्धि में याद रखना चाहिए कि हमको न ब्रह्मा पढ़ाते हैं, न विष्णु पढ़ाते हैं और न शंकर पढ़ने वाला है। पढ़ाने वाला कौन है? बाप पढ़ाने वाला। भारत जीव शंकर को मिला के एक कर दिया है। शंकर ने ऐसा पुरुषार्थ किया होगा तो बाप समान पहले बन गया होगा, पहले बन जाए। लेकिन बाप तो बाप ही है ना। शिव बाप सदा शिव कहा जाता है। शंकर के लिए है करेंगे कहेंगे सदा शंकर, तो शिव और शंकर में अंतर हुआ ना। शिव त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र। शंकर नेत्र कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं? शिव नेत्र। तो शिव बाकी है जो कभी देह धारण नहीं करते, देह में उनका अटैचमेंट नहीं होता। तुम कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा हमको सुनाए रहे क्या? और वो क्या कहेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये निराकार से सुनते हैं या देहधारी से सुनते हैं? ये तो तुम कहेंगे कि हम निराकार से सुनते हैं और वो देहधारी ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये मनुष्य से सुनते हैं। तो अंतर हुआ ना तुम्हारी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में, बहुत अंतर हुआ। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है निराकार, हम निराकार से वर्षा ले रहे जो साकारी आकर के बनता है। कोई मुकर्र है जिसके द्वारा साकारी बनता है, उनको परमात्मा कहा जाता है और इनको देवता कहा जाता है। पोजीशन तो अलग अलग है ना। उनको कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवताए नम, विष्णु देवताए नम। शंकर को भले महादेव कह देते हैं तो है तो देवता ना। परम पिता परमात्मा तो एक शिव का नाम है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है तो जरूर उनके द्वारा प्रजा रखते होंगे। ब्रह्मा के द्वारा प्रजा नहीं रखते, ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ब्रह्म रचे जाते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारी मनुष्य शक्ति की जो भी प्रजा है, चाहे वो ब्राह्मण को देवता बनने वाले हो, चाहे ब्राह्मण को फिर क्षत्रिय बनने वाले हो, चाहे वो विषय से वैश्य हो और चाहे वो सूर्य लगाने के हो, प्रजापिता ब्रह्मा के साथ बच्चे हैं तो जरूर प्रजा रखते होंगे। पिता ठहरे ना। तो जब सारी मनुष्य शक्ति का पिता है तो उस पिता को बच्चों के सामने मौजूद होना चाहिए ना कि प्रजापिता सूक्ष्म मंत्रवासी हो जाएगा। प्रजापिता कभी सूक्ष्म मंत्रवासी नहीं होता, ब्रह्मा सूक्ष्म बदलवार की हो सकता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है, स्थूल शरीर क्या सकता है। प्रजापिता तो अंत तक जब तक 500-700 करोड़ की प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद न हो जाए, इस सृष्टि की अंतिम मनुष्य आत्मा भी इस सृष्टि पर न उतर आए और उसका भी उतार जब तक न हो जाए तब तक वो वापस नहीं जा सकता। तो तुम बच्चों का ध्यान इन्हें लक्ष्मी नारायण के चित्त की तरफ बाबा जाते हैं, इसलिए चितवाते हैं है? अभी प्रजा और प्रजापिता की बात कह रहे थे, अभी अभी लक्ष्मी नारायण की बात कहने लगे, ये पाता पलट दिया क्या है? बात दूसरी क्यों शुरू कर दी? प्रजापिता की बात करते करते लक्ष्मी नारायण की बात क्यों शुरू कर दी? और कौन से लक्ष्मी नारायण की बात की? सचिव के आठ में लक्ष्मी नारायण की बात करते होंगे, या पहले लक्ष्मी नारायण की बात करते होंगे, या संगम में जो संगम में भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नरसे चारित्र नारायण बनते हैं, उनकी बात करते हैं। जो संगम भी लक्ष्मी नारायण है वो ही प्रजापिता वाली आत्मा है। इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण को, शंकर को, कृष्ण को नेक्स्ट टू बाण बोला है। अलग अलग उर्लियों में ये लक्ष्मी नारायण है नेक्स्ट टू गॉड, प्रजापिता है नेक्स्ट टू गॉड, शंकर है नेक्स्ट टू गॉड और कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड। इससे क्या साबित हुआ? नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे? जब जम्बल के लिए जाएंगे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के ऊंचे से ऊंचे पद डिक्लेयर किए जाएंगे तो ऊंचे से ऊंचे शिव, उसके बाद नेक्स्ट कोई तो होगा, एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। और उस एक में नाम अनेक के गिना दिए तो उससे क्या साबित हुआ? कि वो जो नाम है वो काम के आधार पर दिए हुए। ज्ञान जल के बीच घर बनाकर रहता है तो उसका नाम है नारायण, आयना माना घर, नर माना मनुष्य। ऐसा मनुष्य जो ज्ञान जल के अंदर घर बनाकर रहता है, जहां कहीं भी जाएगा, जहां कहीं भी रहेगा, जो भी कार्य करेगा ज्ञान जल के अंदर करेगा तो उसका नाम हुआ नारायण। और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, कौन सा कृष्ण? सतयुग में जो पहला पत्ता जन्म लेगा उसका भी तो नाम कृष्ण होगा, उसको नेक्स्ट टू गॉड नहीं कहेंगे क्या? क्यों? वो बाढ़ का बच्चा नहीं है, डायरेक्ट बाढ़ का बच्चा नहीं है। अगर डायरेक्ट बाढ़ का बच्चा हो तो डायरेक्ट वर्षा प्राप्त करना चाहिए, और जो डायरेक्ट वर्षा प्राप्त करेगा वो पूरे 84 जन्म का एक दिन का भी वर्षा कम नहीं होगा, आठ राउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी। वो तो बहुत नीचे नंबर में गया, उससे ज्यादा ऊंचे नंबर में जाने वाली तो और भी बहुत सी आत्माएं हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण को कहे, लेकिन काम के आधार पर कहेंगे। क्या काम किया? सचिव का कृष्ण तो ऐसा कोई काम नहीं करता जो इसका काम के आधार पर शास्त्रों में कृष्ण नाम पड़ा हो। कृष्ण कहा जाता है आकर्षण करने वाले को, जो अनेक आत्माओं के दिल को, अनेक आत्माओं के मन को, बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, उसका नाम रखा गया है शास्त्र में कृष्ण। तो सबसे जाती हमारी बुद्धि को कौन खींचता है? कौन खींचता है? शिव बाबा खींचता है। अगर नेक्स्ट टू कृष्ण कहे तो क्या बुराई है? जिसको हम बाबा कहते हैं वो बाबा सिर्फ बिंदु नहीं है, वो बिंदु प्लस साकार शरीरधारी भी है। तो जिस साकार शरीर के द्वारा आकर्षित करते हैं हमारी मन बुद्धि को, उसका नाम भी कृष्ण डाल दिए। बाकी ऐसे नहीं है कि वो नेक्स्ट टू कृष्ण गीता का भगवान है। गीता का भगवान है या गीता माता से भी वर्षा लेने वाला है? वर्षा लेने वाला माता गुरु बिगड़ कोई का अवतार हो न सके। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है, मनुष्य आत्मा, जो माता के बिगड़ उद्धार पा सके। बिगड़ माता के स्वर्ग के गेट में जा सके। इसलिए गेट का उद्घाटन किसके द्वारा कराते हैं? ब्रह्मा द्वारा करा। ब्रह्मा तो अनेक है, अनेकों के नाम ब्रह्म है। बाबा तो कहते हैं जिसमें शरीर में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। लेकिन स्वर्ग का गेट उद्घाटन करने का अधिकारी ब्रह्मा कौन सा हुआ? यज्ञ के आदि में भी तो कोई माता ने प्रवेश किया था, वो भी तो आदि ब्रह्मा हुआ। क्या उसके द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन हुआ? हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ नहीं हुआ? अगर हुआ भी तो सैंपल के बतौर हुआ, छोटे रूप में हुआ। जैसे अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बना करके रखते हैं, वो भक्ति मार्ग का मॉडल था। यज्ञ के आदि में कराची में ऐसा मॉडल तैयार किया गया था, लेकिन वो सदाकाल का नहीं था, एक सैंपल मात्र था। ऐसी सतोपदान आत्माएं वहां रही पड़ी थी जिनकी बुद्धि एक बाप की तरफ लगी हुई थी, ब्रह्मा बाबा की तरफ बुद्धि लगी हुई थी और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाती थी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब कोई की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं थी, कोई को देखते ही नहीं थे, तो दिन किसे लगा देंगे? तो वो हुआ स्वर्ग का मॉडल। लेकिन मॉडल हुआ, असली नहीं हुआ। अभी अंत में जो आदि में छोटे रूप में था वो अंत में बड़े रूप से दिखाई पड़ेगा। वही आदि माता अंत में फिर निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट उद्घाटन करने की। आदमी क्यों नहीं हुआ? आज में संपन्न स्टेज में स्वर्ग का गेट का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? क्या भूल हो गई? अरे कोई भूल हुई होगी तभी तो नहीं हुआ है? क्या नहीं? प्रवृत्ति मार्ग नहीं था, विधवा हो गई थी क्या? गीता का भगवान प्रैक्टिकल में जो होना चाहिए साकार रूप में वो बुद्धि में नहीं था, और वो भूल जो आज में हुई थी वो अभी भी हो रही है, अभी भी जारी है। गीता का भगवान अभी भी जिसे होना चाहिए बुद्धि में साकार रूप में वो अभी भी नहीं है। जैसे बाहर की दुनिया के ब्राह्मण है वो जब गीता पढ़ते हैं तो स्वीकार तो कर लेते हैं कि गीता का भगवान निराकार होना चाहिए, ऐसे ऐसे श्लोक गीता में आए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि मेरा नार गीता का भगवान है तो फिर वो गीता ज्ञान कैसे सुनाते हैं? गीता ज्ञान अमृत कैसे कही जाती है? तो कोई जवाब नहीं दे सकते। अभी हम बच्चों की बुद्धि में आया है, क्या आया है कि गीता का भगवान साकार कृष्ण बनाम ब्रह्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने जो साकार रूप में पाठ बजाया वो गीता का भगवान का पाठ नहीं था, टेम्परेरी पाठ था। जैसे किसी को चांस दे दिया जाता है, ऐसे यदि की आने वाली माता जब चली गई तो उसका चांस मिल गया गीता माता। जो आज में गीता थी वो अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है, और जो अंत में गीता प्रत्यक्ष होती है पहले तो उसकी बुद्धि में बैठना पड़े कि गीता का भगवान कौन है। और जिसे आज गीता जो दोबारा जन्म लेकर के गीता माता का टाइटल लेती है, पेंसिल नहीं लेती बल्कि प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाती है, वो प्रैक्टिकल कर्म कम करके दिखाएगी। जब गीतापति भगवान को पहचाने और पहचान करके कदम कदम पर श्रीमत पर चले, श्रीमत से ही स्वर का गेट खुलेगा या मनमत से खुलेगा, श्रीमत से ही स्वर का गेट खुलेगा। कोई भी मनुष्य मात्र की मनमत से स्वर का गेट नहीं खुल सकता, बल माता को ही निमित्त बनना है। माता गुरु बिगर उद्धार नहीं होगा, लेकिन माता साकारी होती है या निराकारी होती है? साकारी होती है। जब माता साकार शरीर का रूप है तो उसमें आत्मा के रूप में कार्य करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मांड दादा जी करा, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर, शरीरधारी आत्मा। तो दोनों की बुद्धि में ये बात बैठनी पड़े, बैठानी पड़े क्या कि गीता का भगवान केवल शंकर भोलेनाथ है और कोई मनुष्य मात्र नहीं है। जब तक ये पहली हल नहीं होती है तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। द्वापर के आज में एकदम शुरुआत में संस्कृत वाली जो गीता है मनुष्यों की लिखी हुई, उसमें भी साकार शब्द का नाम नहीं था। ऐसे कि हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी शुरू हुई, पहले मुनियों में सिर्फ लिखा जाता था शिव बाबा याद है, और बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी थी तो उस समय मम्मा की ना मौजूदगी में ये लिखा जाने लगा शिव बाबा याद है से पहले पिताश्री का नाम जोड़ दिया गया, पिताश्री अर्थात ब्रह्म, माना ब्रह्मा ही शिव बाबा हो गया। तो जो हम ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है वो भक्ति मार्ग में शूटिंग हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है आदि में शास्त्रों में सच्चाई थी द्वापर के आदि, और बाद में जब इंटरप्रिटेशन हुए शास्त्रों के तो गीता झूठी हो गई। कृष्ण की उपासना करने वाले सांगे और साकार पुजारियों ने उसमें गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, श्रीकृष्ण भगवान बात लिख दिया। वही गलती हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी हो रही है, बेसिक नॉलेज में भी हो रही थी, एडवांस नॉलेज में भी हो रही है, क्या गलती हो रही है? अरे बुद्धि में बार बार याद किसकी आनी चाहिए? गीता का भगवान एक शिव बाबा दूसरा न कोई बुद्धि माना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक ही जगह दो याद आते हैं, एक ही याद आता है, दो दो भी याद आते हैं। इसलिए उन्हें बोला है कि सन्यासी लोग गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 मुंह से कहते हैं, मुख से कहेंगे राम राम और बुजुर्ग भी हाथ खाई में डाल देंगे गौ के मुख से। हमारे बुजुर्ग भी हाथ से गौ का मुख याद आता है और मुख से किसको याद करते हैं, राम राम याद करते। तो ये तो दोगली बात हो गई, मुख से कुछ कहना और हाथों से कुछ करना, करना कुछ और कहना कहना कुछ और। तो जब तक अंदर बाहर एक आवाज नहीं निकलती है, अंदर बाहर एक तरीके से बात नहीं बैठती है कि गीता का भगवान कौन, तब तक सिद्धि नहीं हो सकती। अभी बात किए थे कि बैजिस बनाओ, त्रिमूर्ति का बैज बनाओ और दूसरी तरफ उसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र छपाओ। उन तथागत तो ब्राह्मणों ने तो फटाफट छपा दिए, फटाफट बना लिए, प्लास्टिक में प्लास्टिक के चित्र पहली पहली बार तैयार हुए, लाखों की तादाद में बन गए। छोटा सा बैज होता था जैसे लैमिनेशन, दोनों तरफ से प्लास्टिक से बंद और अंदर चित्र डाल दिया था छपा हुआ, एक तरफ लक्ष्मी नारायण और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति। चलो जड़ चित्र बनाया था, जड़ जेल में रखा था, तो जड़ बुजुर्ग की पाकिट में रखने से कुछ होगा नहीं। ये है बुजुर्ग की पाकिट, कोई को भी हम समझाने जा रहे हैं तो बुजुर्ग की पाकिट में से वो बैज निकाल ले और उसको समझाना शुरू करें। अपनी बुजुर्ग की पाकिट में पढ़ा होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे, अपनी बुजुर्ग की पाकिट में ही उस बैज का रहस्य पढ़ा होगा तो दूसरों को कैसे समझा दें, कैसे त्रिमूर्ति का नाम समझाएंगे, ये ब्रह्मा कौन सी मूर्ति है, क्या इसका कार्य है, विष्णु कौन सी मूर्ति है और क्या इसका कार्य है, और शंकर कौन सी मूर्ति है, और दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण का चित्र। इस त्रिमूर्ति शिव के ज्ञान से इन तीन मूर्तियों के अगर बुद्धि में ज्ञान बैठ गया तो हमारा जीवन लक्ष्य नारायण नारायण श्री लक्ष्मी जैसा बन सकता है, ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा भी ये बैठित बनवा रहे हैं, कोई को भी समझाने में बहुत सहज बुद्धि हो सकती है, बुद्धि में रहना है। हमने 84 जन्म पूरे किए क्या, ये त्रिमूर्ति का चित्र है, ये लक्ष्मी नारायण की बात है, ये गीता की भगवान की बात है, इनकी बुद्धि में पहले बैठेगी, जिन्होंने कम जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगी, या जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगी, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, एक दो चार वर्ष भी कम नहीं, उनकी बुद्धि में पहले बैठेगी। तो बुद्धि में रहना चाहिए, हमने 84 जन्म पूरे किए, पितरों प्रधान से सतो प्रधान हमको बनना है। ज्ञान और भक्ति में राम चिंता करते क्या बन गए, राम चिंता ज्ञान माना जानकारी सच्चाई की, और भक्ति माना अज्ञान अंधकार अंधश्रद्धा अंधविश्वास अनिश्चय ज्ञान से दिन होता है, ज्ञान से सो जा होता है और अज्ञान से रात हो जाती है। ये तो सब कहने करते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की राह अभी क्या चल रही है? ब्रह्मा की राह चल रही है। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा का दिन हो गया। अच्छा, अगर ब्रह्मा का दिन हो गया तो तुम्हारी ब्रह्मा अंधेरे में है या उजाले में है? बुद्धि से उजाले में। ये कैसे? बुद्धि से उजाले में होगा तो प्रैक्टिकल में भी उजाले में होगा। अरे ब्रह्मा कौन होता है? ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा माने माँ, बड़ी माँ। अच्छा, ज्योति बिंदु ऊपर से जब आता है ज्ञान देने के लिए आता है या भक्ति सिखाने के लिए आता है? तो जो मकसद लेकर के आता है उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसमें प्रवेश करता है, जिसका पहले पहले आधार लेता है, वो कौन होता है? वो बड़ी माँ होता है। शिव ऊपर से आता है तो आकर के ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है या भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए आता है? ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है। तो जब ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है तो ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए किस में प्रवेश करता है? मतलब दो बातें हो गई। कोई कहता है माता में प्रवेश करता है, कोई कहता है पिता में प्रवेश करता है, कोई कहता है दोनों में प्रवेश करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी बहती है जहाँ से, उस स्थान का नाम क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी जहाँ से बहती है उस स्थान का नाम है अल्लाहाबाद। मुसलमान अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, जिसको अल्लाह समझना है तो अल्लाह कहते इल्लल्लाह। तो त्रिवेणी बहती है अल्लाहाबाद से, तो क्या करना चाहिए? सागर की ओर चलना चाहिए। त्रिवेणी अल्लाहाबाद से बहती है और चलना चाहिए सागर की ओर। वो तीनों नदियां मिलकर के सागर में बाद में जाती है, लेकिन जहाँ से मिलती है वहाँ से नाम क्या पता है? अल्लाहाबाद ना। तो यज्ञ के राज में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये भी तो तीनों ज्ञान की नदियां हैं या नहीं है? सूक्ष्म रूप में नहीं, ये भी ज्ञान की नदियां है। उनका जो स्थूल रूप है वो प्रैक्टिकल चैतन्य रूप में नदियां फिर बाद में तैयार होती है, संसार में प्रत्यक्ष होती है, तो उस समय भी तो अल्लाहाबाद हुआ ना। इसलिए कुंडू भाई कहते हैं चलो सागर के किनारे, लेकिन उस समय प्रत्यक्षता तो हुई नहीं। न ब्रह्मा की बुद्धि में प्रत्यक्षता हुई, न विष्णु की बुद्धि में प्रत्यक्षता हुई और न शंकर की बुद्धि में प्रत्यक्षता हुई। प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? 76। तो 76 जब प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तो जरूर उस प्रत्यक्षता वर्ष में ही तीनों मूर्तियों की बुद्धि में ये बात बैठती है। कोई की बुद्धि में अंशकार के लिए, अल्पकार के लिए बैठती है, और कोई की बुद्धि में नंबर वार बैठती है, और कोई की बुद्धि में सदाकाल के लिए बैठती है। सदाकाल उस मूर्ति की बुद्धि में बैठती है इसमें सदाशिव सदा के लिए मुकर रूप से प्रवेश करता है। तो वह स्थान कौन सा हुआ? वो स्थान कौन सा हुआ? माउंट आबू से बैठती है, माउंट आबू से 303 गेट आउट किया जाता है या प्रत्यक्षता होती है
कलकत्ता,
कलकत्ता से प्रत्यक्षता होती है, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। अच्छा जब अल्लाहाबाद से प्रत्यक्षता होगी, तीनों नदियां मिलकर के एक हो जाती है, तो ज्ञान की धारा जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो कौन सा शहर आता है? ज्ञान की धारा आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती है। जब कानपुर जाते हैं सुनते सुनते तो बाद में इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद के बाद
वाराणसी,
जिसका नाम बाबा लेते हैं बनारस। बाबा बोलिए क्या बोलते हैं, बनारस या वाराणसी? वाराणसी नाम देते हैं अंग्रेज और बाबा नाम देते हैं बनारस। बनारस का अर्थ क्या हुआ? जहाँ से ज्ञान का बना बनाया रस मिलता हो वो हुआ बनारस। तो एडवांस ज्ञान का बना बनाया रस कहाँ से निकला? वो वहां से निकला जो सात तीर्थों का मान्य माना जाता है, शास्त्रों में। यहाँ से सृष्टि की आदि की कथा भी शास्त्रों में आई है। राजा उत्तानपाल के दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजा ध्रुव की कथा शुरू होती है, जो नाम से पढ़ते हैं दो शब्द और जो पद और द्रौपदी। द्रौपदी अर्थात ध्रुव पद पाने वाली। दुनिया कितना भी हिलाए डुलाए, रावण संप्रदाय नैया को कितना भी हिलाने अथवा डुलाने, लेकिन नैया डूब नहीं सकती, पार जाती है। जो पद उसे पाना है वो ध्रुव पद है, इसलिए नाम पड़ा द्रौपदी। द्रौपदी से बिगड़ करके हो गया द्रौपदी। आज भी यादगार में वहां द्रौपदी कुंड बना हुआ है, बहुत बड़ा द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। इतना बड़ा कुंड बनाया तो उसमें सामग्री कितनी स्वाहा होती होगी, नहीं तो छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया जाता है और 10-15-20-12 ब्राह्मण उसके आसपास बैठते हैं, स्वाहा की आवाज होती है। और वहां तो इतना बड़ा कुंड बना लिया, तो क्या स्थूल अग्नि जलाने की बात जो शास्त्रों में आई है वो सही है या योगाग्नि की बात सही है? कोई जरूर है योगाग्नि का कुंड है, जिस एक ही कुंड में आत्माओं ने जाकर के अपना तन, अपना मन और अपने धन को स्वाहा किया, कम से कम 7 दिन के लिए स्वाहा किया। 7 दिन की भर्ती होती है ना, तन भी लगाया जाता है, धन भी लगाया जाता है, मन भी लगाया जाता है और समय भी लगाया जाता है, संपर्की और संबंधियों की बाजी भी लगाई जाती है। क्योंकि जो संपर्क में आने वाले हैं, लौकिक दुनिया के संबंध में आने वाले हैं, उनको छोड़ करके आना होता है। ये सब कुछ स्वाहा करने के बाद ये 7 दिन की भर्ती पूरी होती है। 7 दिन की न कहे 9 दिन की कहे, देखो लौकिक दुनिया में भी जब कोई बच्चा बनता है पाप का तो 9 महीने गर्भ में पकता है, 9 महीने पकने के बाद फिर वो प्रत्यक्ष होता है बाहर की दुनिया में और कहा जाता है बाप का बच्चा पैदा हुआ। वो है हद की बात, वो है हद का गर्भ और यहाँ है ज्ञान का गर्भ। या तो सूक्ष्म बातें हैं, गर्भ का टैंकी यहाँ छोटा सा है चौरासी दिन का फाउंडेशन डालने वाला, वो तो एक जन्म का फाउंडेशन डालने वाला गर्भ होता है सामान्य दुनिया में, और ये है चौरासी जन्मों का फाउंडेशन डालने वाला ज्ञान गर्भ। इस ज्ञान पदम से अगर कोई आत्मा पक्की मजबूत होकर के निकलती है, अच्छे संकल्पों से गुजर करके निकलती है, तो उसका पार्ट जरूर ऊंचा होता है। और जो संघर्ष में आ जाती है, सात दिन बहुत मुश्किल से करते हैं अथवा छोड़ के बात खड़ी होती है, ऐसी ऐसी बिलहनी आत्माएं भी आती है जिनको सात दिन की भट्टी पूरी करना मुश्किल हो जाता है और भाग ही जाती है। तो बच्चा गर्भ में ही मर पड़ता है, कोई बच्चा गर्भ से बाहर आने के बाद मर पड़ता है, कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो अंततः अपना पुरुषार्थ अच्छी रीति करता है, तो वो भट्टी में पता चल जाता है। कहते भी है लालने के पांव पालने में पैर मालूम पड़ते हैं, तो भट्टी के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो जो डायरेक्शन सुकुरी में आए हुए हैं भट्टी के लिए, वो सारा बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। आत्माओं को पहले से ही समझा के लाना है, ये माता पिता का घर है, सात दिन बाहर की दुनिया में बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए बिल्कुल। बाहर की दुनिया में अगर बुद्धि भटकती रहेगी तो फाउंडेशन भी वैसा ही पड़ जाएगी, चिट्ठी भी किसी को नहीं लिखने देना है, कौन से बात भी नहीं करने देना है। जैसे गर्भ में जब आत्मा प्रवेश होती है तो बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन टूट जाता है, उस घर की चार दीवारी के वायुमंडल से बाहर भी नहीं निकलने देना है। अगर बाहर भी निकला तो बत्ती खंडित हो जाती है। ये सारे नियम मुरली में बताए हुए हैं, मुरली में तो जो जो बात बताई हुई है बाबा ने सब पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करनी चाहिए। तो तुम बच्चों के इतने पालों का ज्ञान पैदा हुआ है, ज्ञान से दिन होता है, रात से भक्ति होती है, रात में सारा धक्के खाते रहते, भक्त पुकारते हैं भगवान हमको आकर के इस दुख से छुड़ाओ, क्या क्या करते हैं भक्त, क्या करते हैं पुकारते रहते हैं। माउंट आबू में क्या करते हैं आवाज करके पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं, दिलों दिमाग से पुकारते हैं। अच्छा बाकी बात छोड़ दो, यहाँ कोई कोई पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं, बच्चे पुकारते हैं कि आ जाओ आ जाओ, यहाँ तो बैठेंगे तो पहले पहले गीत क्या बजा देंगे, तो भी कृष्ण का गीत बजा देंगे, ध्यान करना भगवान को और किस किस तरह लेंगे एक करेगी आ जाओ, बहुत दुख है। तो क्या हुए भगत हुए क्या नहीं हुए, बनना क्या है बनना यानी बच्चे हैं, देखा दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी, भक्त पुकारते हैं कि भगवान आकर के हमको दुख से छुड़ाओ, वास्तव में वो तो करता है और सुख करता है, सचिव में होता ही सुख है। तो ये तुमको कंठ होना चाहिए, अभी तुम जानते हो हम तो सुख दीजिए, रचयिता बाप और रचना की आत्मा जंत को हमने ही जानते थे। अब बाप ने बताया जो देवताएं सचिव में थे वो कहां से लेंगे, उन देवताओं की बाध्यताई किसने लूट ली, रावण ने लूट ली, रावण कौन है पांच विकार, अरे पांच पिता रावण होते तो रावण का चित्र बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अरे
रावण का चित्र तो बना के रखा गया है, सीढ़ी का चित्र
रावण का चित्र सीढ़ी में बना के रखा गया है, माने इसका चित्र बना के रखा गया है तो कोई चरित्र करने वाला भी होगा ना। अगर चरित्र करने वाला भी कोई है तो कोई प्रैक्टिकल में हो फिर तो उसका नाम रूप भी होगा है? तो बादशाही किसने लूट ली? श्री लक्ष्मी नारायण की बादशाही किसने लूटी? तक ये था पांच विकारों ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने आंधी ये पांच विकार जी 100% कौन तो उनका बाप हुआ। पांच विकारों का बाप है दे हनुमान, दे हनुमान रूपी गदा तो रावण के सर के ऊपर दिखाया जाता है। तो रावण अलग हुआ और उनका बाप बाप अलग हुआ। अरे बाप से ही तो पांच विकारों की दुनिया आती है और बाप से ही निर्विकारी दुनिया आती है। ये सारी सृष्टि जो चार युगों में बटी हुई है, सत्व प्रधान सत्व सामान्य रजो और तमो, ये सारी शक्ति का मनुष्य शक्ति का बीज कौन है? बीज तो प्रजापिता है, तो जब बीज होगा तो धरणी भी होगी। धरणी कौन है? अरे धरणी भी तो कोई होगी ना, मैं कहता अगर बीज है तो रचना भी तो कोई होगी ना। पांच विकार भी होंगे तो जो पांच विकार है उनका मुखिया है काम, और वो कब से आता है? दो से जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है, उससे पहले नहीं। अगर इब्राहिम युग का नाम लेते तो इब्राहिम तो सत्व प्रधान आत्मा आती है या तमो प्रधान आत्मा आती है? सत्व प्रधान आती है, उसको रावण कहेंगे? सत्व प्रधान को रावण कहेंगे? वो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा आधारभूत है और उसको जन्म देने वाली आत्मा बीज है उसका पिता। तो दो सारे काम किसके ऊपर किया जाए?
पिता के ऊपर,
पिता के ऊपर माता पिता के ऊपर ही बात आ जाती है ना। माता भी है और पिता भी है। अगर पिता को माता ने सहयोग न दिया होता तो पिता अभी ना कुछ कर पाता है? तो पिता नहीं कर सकते था। तो जो रावण की दुनिया शुरू होती है वो उसका कनेक्शन ब्राह्मणों की दुनिया से है या बाहर की दुनिया से है? बाहर की दुनिया से तो जो आत्माएं आती है वो द्वापर से परम नाम से आती है, उस दुनिया से तो कोई कनेक्शन ही नहीं। फाउंडेशन तो यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में डाला जाता है, तो ब्राह्मण की दुनिया में इस समय आधारभूत आत्माएं भी है और बीजभूत आत्माएं भी है। सारी दुनिया का बीज एक राम बाप है और सारी दुनिया का आधार एक कौन है? सारी दुनिया का आधार पृथ्वी है। चंद्रमा है या पृथ्वी? पृथ्वी। चंद्रमा तो उसका एक हिस्सा है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी जगह पर रहता है और जो उससे पैदा होता है वो उसके आसपास घूमता है। माँ बाप बच्चे के आसपास घूमते हैं या बच्चे माँ बाप के आसपास घूमते हैं? बच्चे घूमते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी नाम ही तब पड़ता है जब पृथ्वी आती चौड़ी चकड़ी हो जाती है, विस्तार को पाती है, उसका नाम है पृथ्वी। देखो पहले पहले सत्यु के आदि में दुनिया की आबादी कितनी थी, दो लाख भी पार जो होती है, पहले पहले तो 4.5 लाख थी। 4.5 लाख का संगठन में एक साथ शुरू नहीं हो जाता, पहले और भी थोड़े रहे होंगे कि एकदम 4.5 लाख का संगठन से शुरू हो जाता है। पहले दुनिया छोटी रही होगी ना, तो जितनी छोटी दुनिया उतना छोटा स्थान।
सूर्य स्थान छोटा होता है, सूर्य बिजली का साइज छोटा हो जाता है।
पृथ्वी पृथ्वी माना आत्मा, जिसको हम पृथ्वी कह रहे हैं वो शरीर को नाम दे रहे हैं या आत्मा को नाम दे रहे हैं? आत्मा को नाम दे रहे हैं। आत्मा जो है उसके दिल में कहीं न कहीं उन आत्माओं को जगह रहती है। इन आत्माओं के लिए, आग के लिए, और सब दुखदायी है लेकिन अष्टदेव दुखदायी नहीं होते, और सब प्रकृति का पोल्यूशन करते हैं, सिर्फ 8 देवता रहते हैं जो प्रकृति का पोल्यूशन नहीं करते। तो दिल से दिल को राहत होती है, जो हमको दिल को देता है या दिया होगा उसके प्रति हमारे मन के अंदर दिल के अंदर खोद आ सकती है। जिसने हमको कभी दुख दिया ही नहीं तो खोद क्यों आएगी? किसी के प्रति शब्द में संकल्प में कुछ खोट आती है तो उसका हिसाब किताब पूर्वजन्मों से जुड़ा हुआ है या नहीं है? जुड़ा हुआ है। तो जो आज की दुनिया है वो दुनिया बहुत छोटी दुनिया है, वो दिल्ली रूपी दिल उस समय दिल्ली विस्तार को पाई हुई होगी ये कहेंगे, या सूक्ष्म स्वरूप हो चुका होगा ये कहेंगे। अति सूक्ष्म स्वरूप है प्रकृति भी, औरों के लिए विनाश के काल में दुखदायी होगी लेकिन अष्टदेवों के लिए दुखदायी नहीं होगी। और सारी दुनिया प्रकृति के कहर से कराएगी हमारेगी और वो आत्माएं सुखी रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाप का ज्ञान सीखा है, बाप के आने के बाद भक्ति का आरंभ नहीं अपनाया। भक्ति में होता है दिखावा और ज्ञान में गुप्त होता है या दिखावा होता है? गुप्त होता है, कोई प्रकार का दिखावा नहीं, तन का भी दिखावा नहीं, तन की सेवा का भी दिखावा नहीं, धन का भी दिखावा नहीं, धन की सेवा का भी दिखावा नहीं, वादा का भी दिखावा नहीं। वादा से बोल बोल करके मेहमा करें वो भी नहीं। इसलिए पांडव थे गुप्त और संख्या में कितने थे? 5 पांडव आएंगे।
रावण का पिता क्यों है? कौन होगा?
रावण का बाप,
रावण का बाप
देह अहंकार,
देह अहंकार इनको साकार को सही शरीर नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा?
बुरा तो
जब जब रूप दिखाया गया
तो प्रजापिता का पूरा आशा हुआ था।
गधा गधा दिखाया गया, गधा नहीं दिखाया गया, गधे की बुद्धि में बाहर बैठती है नहीं बैठती है? गधे को बार बार नहलाओ धोलाओ वो फिर क्या करेगा? गधा क्या करेगा? मिट्टी में लौटेगा ना? मिट्टी यहाँ कौन सी है? देवान की मिट्टी। तो देवान की मिट्टी में क्या अभी मछली की सोल नहीं लौट रही? लौट रही है ना। तो अगर गधा होगा तो गधे को चलाने वाला कोई होगा ना? गधे को चलाने वाला कौन? अरे वो भी बाथर में नहीं होगा, कोई धोबी नहीं होगा? नहीं बाप तो कहते हैं मैं धोबी बन करके आता हूँ। बस एक ही बात है,
संबंध एक 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 शुरू होता है 2018 से या 2027 के बाद।
बिना की डेट पूछ रहे हो क्या?
कंफ्यूजन में आया हुआ है, ये कौन सा साल से हो रहा है?
जब नई दुनिया की शुरुआत होती है पूरा दुनिया का विनाश होता है।
2036 के बाद या 2018 के बाद?
ये डेट नहीं बताई जाती है, क्या तारीख नहीं बताई जाती है।
हाँ जी, सुंदर। हाँ, टाइम का पार्ट कब शुरू होता है और सुंदर का पार्ट कब शुरू होता है?
जब तुम्हें सुंदर लगे तब सुंदर का पार्ट, जब तुम्हें काला लगे काला
हमारी मनबुद्धि,
जब तुम्हें काला भूत दिखाई दे तो काला
ना। और मुली ने कहा है एक ही शरीर पर लागू होता है श्याम सुंदर, तो श्याम तो 1942 से तो सेवाक्रम तो थोड़ी छोड़ दिया, वहाँ से श्याम होगा थोड़ी तो छोड़ दिया, नया जन्म तो लिया है। लेकिन नए जन्म के बाद जब पाली सेंटर में ज्ञान में आए उसके बाद तो सुंदर होना चाहिए।
चाहिए
सुंदर के समाज,
अगर सुंदर हो जाएगा तो प्रवेश कौन करेगा? इसलिए एक गाड़ी में सुंदर, एक गाड़ी में क्या? अभी अभी एक को दिखाई पड़ेगा सुंदर और दूसरे को दिखाई पड़ेगा क्या? ये चलता रहता है, ये शूटिंग होती रहती है।
काम
बिगाड़
का
बताया
जाता है, काम
बिगाड़
पीने वाले
हैं। हाँ जी, उसमें दिखाया गया सांप, शंकर पीता है कि शिव पीता है? सुबह
पीता है, चलो सुधार दिया। शरीर में सांप दिखाया गया लिखता है, बंदर क्यों दिखा गया है?
बंदर क्यों दिखाया जाएगा? सांप
नहीं, बंदर तो है, काम बिगाड़ काम तो लोग मानता है सब है, सांप तो नहीं है।
सांप जो है ना उसके मस्तक में मणि होती है और बंदर के मस्तक में मणि नहीं होती है। सांप में विशेषता है, क्या विशेषता है? जो धारा होती है नदी की ऊपर से नीचे की ओर जाती है, वो सांप उस धारा को काट के ऊपर कर सकता है, तैर सकता है, बंदर नहीं तैर सकता। इसलिए तुम अपनी मणि को याद रखोगे तो असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकते, तो बंदर बनाओगे तो सांप बनाओगे।
सांप आपका जोगी बनता क्या
है?
सांप का भी हाथ पैर कुछ नहीं होता।
सांप को हाथ पैर नहीं होता, आप पांव नहीं होता, चलता कैसे?
पूरा सिर्फ वो
दिखाई नहीं देता,
रीढ़ की हड्डी नहीं देता, कुंडू भाई को ज्यादा नहीं दिखाई देता।
सांप को हाथ पैर है,
सांप को पैर तो है,
दंड होता है उसका, रीढ़ की हड्डी।
अब कुंडू भाई
सिर्फ रीढ़ की हड्डी होती है,
सांप का विश्लेषण सांप की खोज भी कुंडू भाई ने ज्यादा की है। हाँ बोलो,
रीढ़ की हड्डी होती है तो आगे पीछे मेरा बड़ा पेट्रोल चलता है।
रीढ़ की हड्डी सबको होती है,
लेकिन आप होता है,
कोई ऐसा जीव जंतु नहीं होता जिसको रीढ़ की हड्डी ना हो। रीढ़ की हड्डी के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। उसमें जो नीचे हाड़ी होती है ना, तो बैड़ी बैड़ी, वो हाड़ियाँ काम करती है। मड़के भी ऐसे ऐसे होते हैं, मड़के भी करते हैं, लेकिन मड़कों के नीचे जो धारियाँ होती हैं वो विशेष जल्दी जल्दी काम करती है। तुम्हें क्यों नहीं समझ रहा? तुम्हें समझ लो, बाबा की बात है तो समझ में नहीं आती। समझ में तो कन्याओं को तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए, भाइयों को समझ में बड़े बाद में आए। हाँ, कन्याओं की खोपड़ी बहुत पवित्र होती है। क्वेश्चन ये है कि मुरली माया है, शंकर का पार्ट अनरियल है, तो ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आई। सबसे ज्यादा कलकत्ते वालों की समझ में आई,
हमको
दौड़ भी
नहीं आई,
बहुत सके समझ में नहीं आई। बहुत तुम लीडर थोड़े हो, क्या नहीं समझ में आई?
खोपड़ा तोड़ दो आप,
खोपड़ा खोपड़ा तोड़ा जाएगा तभी तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। वेदों शास्त्रों का अंत होगा कि नहीं होगा? आखिर वेदों शास्त्रों का अंत होना है कि नहीं होना है? हाथ के वेदों शास्त्रों का ही अंत होना है या वेद के वेद शास्त्रों का भी अंत होना है? हाथ और वेद दोनों का अंत होना है, तो अंत तो तभी होगा जब खोपड़ा फूटेगा। खोपड़ा फूटेगा तो उसमें असली मान निकला है, ہے، بھیجا کھاؤ، بھیجے سے بڑھیا کوئی گوشت ہوتا ہی نہیں۔